ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नाम्ना मकारि बहुधा निज सर्वशक्तिः तत्रार्पिता नियमितस्मरणेन कालः। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुरागः। हे भगवान्, आपने मेरे ऊपर कृपा करके अपने अनेक नामों का प्रचार किया, मुकुंद, गोविंद, हरि, पुतनारी। उन नामों में आपने अपनी संपूर्ण शक्ति को अर्पण कर दिया और उस नाम के स्मरण के लिए कोई खास नियम और समय नहीं, लेकिन हाय रे मेरा दुर्दैव कि आपके नाम के प्रति अभी तक अनुराग नहीं हुआ। इस श्लोक का आस्वादन हम सुबह के सत्र में किए हैं। कुछ विशेष बात कहने की इच्छा है। चाहे हम कुछ भी साधन करें, लेकिन हरिनाम के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं जो हमको प्रेम प्रदान कर सके। प्रेम प्राप्ति के लिए एकमात्र उपाय है हरिनाम, कृष्ण नाम संकीर्तन, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कोई कोई तो ऐसा भी प्रश्न करता है कि शुरू शुरू में हमको खूब रुचि थी, अब वो डाउन हो गई है। शुरू शुरू में भी रुचि नहीं थी, वो सुन करके जब प्रथम बार स्वीकार किए तो कुछ अच्छा लगा। रुचि का स्तर बहुत ऊपर है। तो यहाँ जो अनुराग कहा गया है, ना अनुराग, अनुराग नहीं उत्पन्न हुआ, वह अनुराग बहुत ऊंचे स्तर पर है। यहाँ नाम में अनुराग का अर्थ नाम में प्रीति, नाम संकीर्तन के प्रति उत्कंठा मात्र है। इस अनुराग का अर्थ वह प्रेम के बाद जो अनुराग का स्तर है वो नहीं है। यद्यपि इस साधक जीवन में जो श्रेय है, जिसको हमें प्राप्त करना है, जो हम प्राप्त कर सकते हैं, वह प्रेम तक ही है। इससे ऊपर की स्थिति इस साधक देह में संभव नहीं है। फिर भी उस प्रेम को प्राप्त करने का उपाय नाम ही है। वृंदावन के दीवालों पर मैं कई बार लिखा हुआ पढ़ता हूँ, जो महात्मा जो सज्जन लिखे हों, कि प्रेम बिना हरि नाम मिले कोटि करो उपचार, नाम जपे बिन प्रेम को होए नहीं संचार। बहुत अच्छा लगा पढ़कर। प्रेम बिना हरि नाम मिले, प्रेम के बिना भगवान नहीं मिलते, कोटि करो उपचार, चाहे कोई उपचार करो। ठीक है, प्रेम से मिलते हैं, लेकिन प्रेम कैसे मिलता है? पहले तो प्रेम प्राप्ति का उपाय चाहिए ना। तो कहते हैं नाम जपे बिन प्रेम को होए नहीं है संचार। बिना नाम जपे प्रेम का संचार हृदय में नहीं हो सकता। इस नाम के प्रति उत्कंठा बहुत जरूरी है। नानुराग मतलब इसके प्रति उत्कंठा नहीं उत्पन्न हुई, जपने की लालसा नहीं उत्पन्न हुई। श्री कृष्ण रति गाढ़ता को प्राप्त होते होते प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव। श्रीपाद रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए महाप्रभु कहते हैं कि साधन भक्ति हैते है रति र उदय, रति गाढ़ हैले तार प्रेम नाम कय। कहते हैं जब साधन भक्ति करते हैं तब रति उत्पन्न होती है, और उस रति के पहले भी भक्ति रसा में सिंधु में साधन बतलाया गया कि नौ स्तर से गुजरने के बाद वो रति प्राप्त होती है, तब प्रेम उत्पन्न होता है। रति जब गाढ़ होती है तो उस रति को प्रेम कहते हैं। रति गाढ़ फैले तार प्रेम नाम कय। प्रेम के आगे के क्रम महाप्रभु बतला रहे हैं। प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव है। जब वह प्रेम वृद्धि को प्राप्त करता है तब उसका नाम होता है स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव। देखिए अनुराग कहाँ है, कितना ऊंचे स्तर पर अनुराग है। उस अनुराग की बात नहीं कह रहे हैं महाप्रभु, केवल उत्कंठा लालसा की बात कह रहे हैं। ना अनुराग, इसका उदाहरण देते हैं। जैसे बीज इच्छु रस गुड़ खंड सार शर्करा सीता मिश्री उत्तम मिश्री आर। महाप्रभु बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं श्रीपाद रूप गोस्वामी को कि जैसे ईख है, बीज होता है, उससे गन्ना तैयार होता है, फिर उससे रस निकालते हैं, रस निकाल कर आग से गर्म करते हैं तब वो रस गाढ़ होने लगता है, गाढ़ होकर वो जो पतला अंश होता है उसको खंड कहते हैं या खंड सार, फिर और गाढ़ होता है तो गुड़ बनता है, और गुड़ की फिर सफाई करते हैं तो उससे शर्करा उजला उजला तैयार होता है, उसको सीता मिश्री या उत्तम मिश्री कहते हैं, काल्पी मिश्री। एक गन्ना से तैयार होता है लेकिन उसका क्रम है। तो सबसे पहले व्यक्ति को श्रद्धा की आवश्यकता है, आदौ श्रद्धा। जब किसी शुभ प्रारब्ध से सौभाग्यवश कहीं से कुछ सुनने का अवसर मिल जाता है या किसी तरह कोई शुभ कर्म है उसके परिणाम से भगवान में, भगवान के नाम में, भगवान के भक्तों में, धाम में श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा का मतलब यह अच्छा है, करने लायक है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। जब साधु अच्छे लगने लगते हैं, मंदिर अच्छा लगता है, सत्संग अच्छा लगता है, भगवान अच्छा लगते हैं, स्वाभाविक लगने लगता है। कोई रथ यात्रा देखकर, कोई पुस्तक पढ़कर, कोई प्रवचन सुनकर, अकस्मात अगर भक्तों से अलग अलग पूछा जाए, इंटरव्यू लिया जाए, आप कैसे भक्त बने, तो सबका अपना अपना इतिहास है। तो जिस तरह से श्रद्धा उत्पन्न हो जाए जैन के प्रकार, तो वह साधु संघ के लिए प्रभावित करती है श्रद्धा। तब दूसरा स्टेप होता है कि हम साधु संघ करते हैं, साधु के संघ में जाना चाहते हैं। और संघ का साधारण अर्थ नहीं है कि बस साधु को देख लिए, मिल लिए, हरे कृष्ण बोल लिए, इतना नहीं। साधु अच्छा लगने लगते हैं, संगम आसक्ति। श्रीपाद जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भागवत में अर्थ करते हैं, जब साधुओं के साथ आसक्ति होती है तब भजन क्रिया प्रारंभ होता है। अब मन में आता है कि भजन करना चाहिए, जप करना चाहिए, साधु धीरे 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 धीरे। यहाँ तो एकदम प्रैक्टिकल प्रोसेस चल रहा है, आप लोगों को खूब अनुभव है। श्रीपाद राधे श्याम प्रभु जी की कृपा से ये प्रोसेस आप लोगों को पता है किस तरह से भजन क्रिया प्रारंभ होती है। नाम जपना, जब नाम जपने लगते हैं तब अनर्थ निवृत्ति होती है। अनर्थ निवृत्ति का अर्थ है हृदय की गंदगी की सफाई होने लगती है, चेतो दर्पण मार्जनम। अनर्थ निवृत्ति के समय विचित्र किस्म का उत्पात चित्त में आता है। जैसे कोई घर एक साल से गंदा पड़ा है, कोई सफाई नहीं हुई है, और उसमें जाकर अचानक झाड़ू लगाने लगी है, तो सबसे पहले तो और ज्यादा गंदा हो जाएगा, धूल कण उड़ेंगे और उड़ कर जो पहले जैसा गंदा था उससे ज्यादा गंदा दिखाई देगा। लेकिन वह गंदा उत्पन्न नहीं होता है, सफाई होता है। तो जब हम भजन करने लगते हैं तो हमारे चित्त की गंदगी दूर होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री राधे। अनर्थ निवृत्ति जब हो जाती है ततो निष्ठा, तब भजन के प्रति निष्ठा उत्पन्न होती है। हाँ अब करना चाहिए, जब तक अनर्थ है वो रोकता है, लेकिन अनर्थ निवृत्ति होती है तो निष्ठा उत्पन्न हो जाती है। निष्ठा के बाद तब रुचि उत्पन्न होती है, और रुचि के बाद आसक्ति। अब भजन के बिना नहीं रहा जाता, तब भाव, तब प्रेम उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार प्रेम प्राप्ति करने के इतने स्टेप हैं, धीरे 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 धीरे। नौवां स्टेप प्रेम है श्रद्धा के बाद। सब में नाम कीर्तन है, कृष्ण नाम संकीर्तन, सबके साथ नाम संकीर्तन कॉमन रूप से लगा है। उसी नाम कीर्तन की दृढ़ता को ही प्रेम कहते हैं। वही प्रेम स्नेह में, मान में, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव, यह इस भौतिक शरीर में संभव नहीं है। प्रेम तक तो संभव है, लेकिन प्रेम के बाद जो ये स्टेज है वो इस शरीर में नहीं, ये शरीर झेल नहीं सकता। प्राकृत शरीर एक साधक देह से जीव केवल प्रेम तक प्राप्त कर सकता है, उससे अधिक नहीं। अतः अस्थाई अनुराग की बात तो बहुत दूर है, जो ऊपर के अनुराग की बात कही गई। स्नेह मान आदि भी साधक देह में संभव नहीं है। इसी से इस अनुराग की बात कहने का अर्थ केवल यहाँ उत्कंठा है, अस्थाई भाव वाला अनुराग नहीं है जो ऊपर कहा गया। उज्जवल नीलमणि में कहा गया है, तद भाव बद्ध रागा जे जानास्ते साधने रता है, तद योग्य मनुरागोयम प्राप्योत्कंठानुसारतः। इसका टीका श्रीपद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर करते हैं। अनुरागोयम रागा नुगिये भजन औत्कंठ न तो अनुराग अस्थायी नम साधक देह अनुरागोत्पत्ति संभवात। अनुराग का अर्थ मात्र रागानुगा भजन के प्रति उत्कंठा है, हम भी कृष्ण से जुट जाएं, जैसे ब्रज के लोग कृष्ण से जुटे हैं, ब्रजवासी लोग कृष्ण को अपना स्वामी सखा पुत्र और प्रियतम मानते हैं, इस भाव के अनुगमन करना फॉलो करना ये अनुराग है। कृष्ण से जो संबंध स्थापन की विधि है तरीका है उसको राग कहते हैं। आपका स्वरूप निर्धारित है, खूब भजन करते 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 एकदम चित जब परम पवित्रता को प्राप्त करेगा, प्रेम के स्तर को प्राप्त करेगा, तब वो अपने आप निर्धारित हो जाएगा। अथवा आपके विषय में ठीक ठीक जानने वाले जो आचार्य हैं, गुरु हैं, वे आपके भाव का निर्धारण करेंगे। इस राग के प्रति जो लालसा है, उत्कंठा है, उसी को अनुराग कहा गया है। न तो अनुराग अस्थायी नम साधक देहे अनुरागोत्पत्ति संभवात। अनुराग की उत्पत्ति इस साधक देह में संभव नहीं है। एक विशेष बात जिसको सनातन गोस्वामी कहना चाहते हैं कि सभी नाम की महात्म समान रूप से है, यह बात कही गई। सभी नामों में आपने समान रूप से शक्ति भर दिया। भक्ति विनोद ठाकुर इस श्लोक के टीका में अनेक शास्त्रों के कुछ श्लोक उद्धृत करते हैं और इसके बाद नामापराध पर जोर देते हैं कि नामापराध से बचकर नाम जप करना चाहिए अनुराग उत्पन्न करने के लिए, उत्कंठा उत्पन्न करने के लिए। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं एक श्लोक में जो श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, नहीं भगवन घटितम मिदम त्वदर्शना नृणाम अखिल पाप क्षयम यह नाम सकृत श्रवणात पुलकसोपि विमुच्यते संसारात। यह छठवें स्कंद के 16वें अध्याय का 44 नंबर का श्लोक है, 6, 16, 44। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से मनुष्य के सारे पाप छीण हो जाते हैं। यह कोई असंभव बात नहीं है कि आपका दर्शन व्यक्ति करे तो उसका पाप छीण हो। प्रगट होई जीव मोहि जबहिं जन्म कोटि अघनाश हैं तबहिं। जब विभीषण जी भगवान राम से मिलने आ रहे हैं, हनुमान जी तो समझ रहे थे, उनसे तो परिचय हो गया था, लेकिन सुग्रीव कहने लगे कि यह क्यों आ रहा है, रावण का भाई है, यह निश्चित रूप से हम लोगों का भेद लेने आ रहा है, इसके साथ हमको क्या करना चाहिए। तो भगवान पूछे, बतलाइए आप राजा हैं, क्या करना चाहिए। तो कहते हैं सुग्रीव जी की इसको अरेस्ट कर लेना चाहिए और अपने समाज के अंदर इसको नहीं रखना चाहिए, नहीं तो ये भेद लेने के लिए सठ आ रहा है, एकदम क्रोध में है सुग्रीव जी। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे सखा, आप बहुत सुंदर नीति का वर्णन कर रहे हैं, राजनीति तो यही कहती है जो आप कह रहे हैं, लेकिन मेरा स्वभाव कुछ दूसरा है। अगर किसी भी नियत से कोई जीव मेरे पास आ जाता है तो मैं यह नहीं देखता नियत क्या है, बस इतना ही काफी है कि मेरे पास आ गया। प्रकट हुई जीव मोहि जबहिं जन्म कोटि अघनाश हैं तबहिं। किसी भी भाव से जीव मेरे सामने आ गया तो उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों का पाप तत्काल समाप्त कर देता हूँ, ये मेरा नेचर है। तो दर्शन मात्र से मनुष्यों का पाप छीण हो जाए, इसमें क्या कहना है, क्योंकि आपका एक बार नाम श्रवण करने वाले व्यक्ति नीच चंडाल भी हो तो संसार से मुक्त हो जाता है। भगवान का नाम राम, नृसिंह और विष्णु इत्यादि, नारायण जितने नाम हैं वो तारक हैं, व्यक्ति को पाप से या बंधन से मुक्त कर देता है, मुक्तिदायक नाम है। आगे भक्ति विनोद ठाकुर फिर कहते हैं, अमन्य चजे यान्ति भगवत कीर्तनम नरा ऋग वेदो यजुर्वेद साम वेदा प्यथर्वण अधिष्ठास्तेन योनिक्तम हरिरित्यक्षर द्वयम् मा ऋचो मा यजुर्तात मा साम पटकिंचन गोविंदेति हरेर नाम गेयम गायस्व नित्यशः। इस प्रकार भगवान हरि हरि केवल दो अक्षर का उच्चारण कर लिया जाए, हरि शब्द बोला जाए तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का पाठ हो गया। इसलिए ऋग, यजु, साम और अथर्व आदि कुछ भी पाठ मत करो, केवल गोविंद इस नित्य गेय हरि नाम का ही सर्वदा कीर्तन करो। ये स्कंद पुराण में है। स्कंद पुराण विष्णु धर्मोत्तर के सब श्लोक हैं, जिसको भक्ति विनोद ठाकुर इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस प्रकार एतन निर्विद्य माना नाम इच्छता कुतो भयम जोगिनाम नृप निर्णितम हरेर नामानुकीर्तनम। भागवतम में भागवत प्रारंभ करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जो व्यक्ति इस संसार से निर्वेद को प्राप्त हो गया है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, दूसरा स्तर है इच्छताम, भोगना चाहता है, उसके लिए जोगी नाम, जोगी का मतलब भक्त, भगवान के भक्ति कर रहा है, भगवान से जुड़ना चाहता है। मुमुक्षु, जोगी, भोगी, तीन स्तर है। इन तीनों के लिए हे राजन यही निर्णित साधन है हरेर नामानुकीर्तनम, भगवान के नाम कीर्तन। इस नाम कीर्तन से तीनों भय से मुक्त हो जाते हैं। यह सभी लोगों ने, सभी शास्त्रों ने, पूर्व आचार्यों ने, सब लोगों ने यही निर्णय लिया है, सबका यही मत है कि भगवान के नाम का संकीर्तन करें, सब पूरा हो जाएगा। यह श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध प्रथम अध्याय का 11वां श्लोक है। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इसी दूसरे स्कंद में, तदस्म सारम हृदयम बतेदम यद गृह मारई हरिनाम धेयई न विक्रिय ताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात रूहे सुहर्ष। जो व्यक्ति इस संसार में भगवान का नाम उच्चारण नहीं करता है, भगवान की भक्ति नहीं करता है, अथवा भगवान के नाम को सुनकर जिसका हृदय पिघल नहीं जाता है, द्रवित नहीं हो जाता है, वास्तव में वो हृदय नहीं, वो लोहा का हृदय है। तदस्म सारम, जिस समय हृदय पिघल जाता है और नेत्रों में आंसू आ जाते हैं, छलकने लगते हैं, रोम रोम खिल जाता है, तब नाम का फल प्राप्त हो गया। महाप्रभु कहते हैं एक नाम उच्चारण करते हुए यदि आंखों में आंसू नहीं आया, शरीर रोमांचित नहीं हुआ, बाणी गदगद अवरुद्ध नहीं हुई, तो इसका मतलब यह है कि अपराध और पाप प्रचुर है। अग्नि में कमी नहीं है, ईंधन में कमी है, बरसात के पानी से भींग चुका है। एक माचिस मई जून के महीने में लकड़ी में, ईंधन में, पुआल में, घास फूस में लगाइए तो तुरंत जला देगा, लेकिन वही इस समय जो पानी से भींग चुके हैं बरसात से, उसमें माचिस लगाइए तो अगर पकड़ भी लिया तो उसकी आर्द्रता दूर करने में धूं धूं करके जलता रहेगा। नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। गीत्वा च मम नामानी बिछरेन मम सन्निधौ इति ब्रह्मिते सत्यम कृतो हम तस्य अर्जुन। भगवान कहते हैं एक जगह कि हे अर्जुन, मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ, जो मेरे नाम का कीर्तन करता है मेरे सामने, मेरे मंदिर में आकर मेरे समीप विचरण करता है, वो मुझको खरीद लेता है, मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। गीत्वा च मम नामानी बिछरेन मम सन्निधौ, सन्निधौ माने मेरे मंदिर में आकर, मेरे मंदिर में आकर अगर मेरे नाम का कीर्तन करता है, गाता है, तो इति ब्रह्ममिते सत्यम, मैं आपसे सत्य कहता हूँ, कीर्तो हम तस्य अर्जुन। भगवान सत्य अर्जुन से कहने के लिए क्यों जोर देते हैं? कभी कभी झूठ बोलते होंगे तो अर्जुन को विश्वास नहीं होता, पता नहीं कब सत्य बोलेंगे कब झूठ बोलेंगे, तो अर्जुन से भगवान को कहना पड़ता है मैं सत्य कहता हूँ, एकदम सत्य, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वै शशि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। हे प्रिय अर्जुन, मैं एकदम सत्य कह रहा हूँ, अगर मन मुझ में लगाओगे, मेरा भक्त बनोगे, मुझे प्रणाम करोगे, मेरी पूजा करोगे, तो तुम मुझको प्राप्त होगे, मैं सत्य प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। हो सकता है दूसरे लोगों से रहस्य की बात नहीं बताई जाए, जहाँ तहाँ पब्लिक में सब कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन तुम मेरे प्रिय हो इसलिए मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्न भिन्नत्वा नामिनी। कृष्ण नाम चिंतामणि के समान सर्वार्थ प्रदाता है। चिंतामणि एक ऐसी मणि है कि जिसको हाथ में लेकर के जो सोचिए वो मिल जाएगा, तो नाम चिंतामणि है, सब कुछ देने वाला है। वे स्वयं कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण माया से परे नित्य मुक्त साक्षात भगवान के समान है। नाम और नामी में भेद नहीं है। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी इसको कहते हैं। अतः कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यमिन्द्रियी सेवन मुखे ही जिह्वादेव स्वयं एव स्फुरत्यध। अगर हम अपने प्रयास से कृष्ण के नाम को उच्चारण करना चाहें तो हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो नाम उच्चारण हो ही जाए। जब वो कृपा करके कृष्ण नाम हमारे जिह्वा को स्वीकार करे, जिह्वा पर आकर उदित हो, जिह्वा जब अप्राकृत हो जाती है, नाम हमारे जिह्वा पर स्फुरित होने लगता है, नाम हमारे जिह्वा को पकड़ लेता है, तब हम उच्चारण करने लगते हैं। सारे श्रुति स्मृति वेद पुराण सब जगह नाम की महिमा है। यह हमारे प्रति भगवान की अहेतुकी कृपा का अप्रतिम उदाहरण है। लेकिन हमारा अत्यंत दुर्भाग्य है, दुर्दैव है कि इस नाम के प्रति तनिक भी अनुराग नहीं हुआ। नामापराध से यहाँ दुर्भाग्य की बात कही गई है कि नामापराध क्या है और किस प्रकार इसे बचना चाहिए। जो नाम संकीर्तन करने वाला व्यक्ति है, नाम जप करता है, ऐसे सत्कर्मियों की भांति सत्कर्म के द्वारा अपने अपराध और पापों को मिटाने की कोशिश न करे। जैसे गंगा स्नान करके, दान देकर, तीर्थ यात्रा करके, कुछ पुण्य कर्म करके, कुछ व्रत करके सोचे कि हमारा पाप मिट जाए, उसको ये नहीं करना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, यदि उसका कोई नामा अपराध बन जाए तब वो करे क्या? व्याकुल चित से, एकदम दुखी चित से भगवान के नाम का आश्रय ले कि हे नाम प्रभु, हमारे अपराध को दूर कीजिए। ऐसा निरंतर हरिनाम करने से अपराध करने का कोई चांस नहीं मिलता है, कोई अवसर नहीं मिलता है, और पहले किया गया अपराध समूह भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसे शास्त्रों में कहा गया है, परमार्थ रूप कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, जो नाम जप का फल है। अपराध शून्य होने पर हरिनाम के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाएगा। अगर अपराध नहीं है तो तुरंत अनुराग उत्पन्न हो जाएगा और उस समय सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त होगी, कृष्ण प्रेम, जो हमारा सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है। एक व्यक्ति का मैं दर्शन किया बहुत पहले बनारस में, एकदम साधारण गृहस्थ, लेकिन कोई ऐसा क्षण नहीं था जब उनके मुख से नाम न निकले, राम 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 राम, केवल एक शब्द बोलते थे, राम 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 राम। इस तरह से अपने जीवन में नाम का अभ्यास अगर हो जाए तो किसी की निंदा नहीं कर सकता, अपराध नहीं कर सकता, आगे भी चांस नहीं है, और जो हुआ है वो तो खत्म हो ही जाएगा। तो इस प्रकार इस श्लोक पर भक्ति विनोद ठाकुर ने एक पद लिखा है गीतावली में, तुहु दया सागर तारिते प्राणी, नाम अनेक तुआ सिखाई लानी, सकल सकति देह नामे तोहारा, ग्रहणे राखली नाही काल बिचारा, श्री नाम चिंतामणि तोहारे समाना, विश्वे बिलायोली करुणा निदाना, तुआ दया ये छन परम उदारा, अतिशय मंद नाथ भाग्य हमारा, नाही जन्मल नाम अनुराग मोर, भक्ति विनोद चित दुखे विभोर। हे दया सागर, आपने प्राणियों का उद्धार करने के लिए अनेक नामों का प्रचार किए और समस्त शक्ति अपने नामों में रख दिए, इसके साथ ही कोई कंडीशन नहीं दिए, कभी भी इसको जपा जा सकता है। आपका नाम चिंतामणि के समान है, आप करुणा करके सबको सर्वसाधारण के सामने इसको प्रस्तुत कर दिए, जो चाहे वो जप कर सकता है। इतने उदार भाव से आपने हमारे प्रति अपना नाम का प्रचार किया, लेकिन हाय रे मेरा मंद भाग्य कि इस नाम के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं हुई। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हमारे चित्त में बहुत भारी दुख है, इस बात का दुख है कि नाम के प्रति उत्कंठा नहीं उत्पन्न हुई। आगे श्रीपाद सनातन गोस्वामी तत्र पिता निज सर्व शक्ति पर लिखते हैं, सभी नामों का समान शक्ति है, समान महात्मा है, यह समझा जाता है, परंतु किसी किसी शास्त्र द्वारा यह प्रमाण मिलता है कि नाम में भी वैशिष्ट है। जैसे पद्म पुराण के उत्तर खंड में बृहद विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र में यह कहा गया है कि राम नाम सहस्त्र नाम के बराबर है, केवल एक बार राम कहा जाए तो विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के बराबर हो जाएगा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम भी तुल्यम राम नाम बरानने। इससे यह जाना गया कि भगवान के अन्यान सहस्त्र नाम जो है 1000 नाम, उसका कीर्तन का जो महात्म है वो एक बार राम उच्चारण करने से पूरा हो जाएगा। फिर लघु भागवतामृत से उद्धृत ब्रह्मांड पुराण के वचन यहाँ कहा गया कि 3 बार राम नाम का उच्चारण किया जाए तो उसका 1 कृष्ण नाम के बराबर है, 1000 विष्णु नाम सहस्त्र नाम 1 राम नाम के बराबर, और 3 बार राम नाम या विष्णु सहस्त्र नाम 1 कृष्ण नाम के बराबर। सहस्त्र नाम ना पुण्या नाम 13 वृत्त्या तु जत फलम, 1 वृत्त्या तु कृष्णस्य नामैकम तत् प्रयच्छति। श्रीपद सनातन गोस्वामी मथुरा महात्म में लिखते हैं कि यह राम नाम तारक मंत्र है और कृष्ण नाम पारक मंत्र है। तारक का अर्थ होता है तारने वाला, व्यक्ति जो दुख में पड़ा है, बंधन में पड़ा है, उसे मुक्त करने वाला, वैकुंठ देने वाला। लेकिन कृष्ण नाम में आसक्त जो व्यक्ति हो जाता है वो वैकुंठ से संतोष नहीं करता, मुक्ति से संतोष नहीं करता। सालोक्य शास्त्री सामिप्य सारूपैकत्वमप्युत दीयमानम न गृहणन्ति बिना मत सेवनम जना। भगवान के सौंदर्य माधुर्य से जो प्रभावित हो जाता है वो मुक्त होकर वैकुंठ में सुख प्राप्त नहीं करना चाहता। 5 प्रकार की मुक्ति है। एकत्व जो सायुज मुक्ति है उसको तो वैष्णव लोग स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन सालोक शास्त्री सामीप्य और सारूप्य ये 4 प्रकार की मुक्ति है। भगवान जैसा लोक प्राप्त करना, जितना सुख वैभव भगवान को है वैसा वैभव भक्त को मिलता है। भगवान जैसा रूप प्राप्त कर लेना, खूब सुंदर चतुर्भुज, और भगवान के निकट उनका पार्षदत्व प्राप्त करना, तो इस तरह की मुक्ति को भी भक्त लोग नहीं चाहते हैं। दीयमानम न गृह्णन्ति, भगवान देते हैं ले लो, नहीं लेते हैं। क्यों? कि यहाँ सेवा का चांस नहीं मिलता है। कृष्ण के प्रति उनका अनुराग हो गया, तत् सुख सुखित्वम के स्तर पर चले गए हैं। भगवान को संतुष्ट करके सुखी होना चाहते हैं, अपने सुख की वहाँ चाह नहीं है। तो इस तरह की बातें कही गई। इस पर फिर एक टिप्पणी है कि ऐसा क्यों किया गया, प्रत्येक नाम को एक समान क्यों नहीं किया गया, अलग अलग क्यों किया गया है। हमारे वैदिक संस्कृति या हिंदू धर्म की एक विशेषता है कि वह सबको एक लाठी से नहीं हाँकता है, सबके लिए एक प्रकार की उपासना का मार्ग नहीं बताता। अस्तर के अनुसार व्यासदेव ने मार्ग निर्धारित किया है। मनुष्यों की प्रकृति, रुचि, संस्कार भिन्न भिन्न है। 4 प्रकार के लोग हैं, कर्म प्रधान, ज्ञान प्रधान, बुद्धि प्रधान और हृदय प्रधान। तो कर्म प्रधान व्यक्ति के लिए कर्म योग, ज्ञान प्रधान लोगों के लिए ज्ञान योग, बुद्धि प्रधान व्यक्ति के लिए निर्गुण निराकार की उपासना, और हृदय प्रधान व्यक्ति के लिए भक्ति योग। हृदय, जिस हृदय में भाव है, श्रद्धा है, सरलता है, स्निग्धता है, उसके लिए भगवान की उपासना है। भक्ति, श्रवण कीर्तन, कथा कीर्तन सुनकर जो भाव विभोर हो जाता है। अलग अलग योग्यता के अनुसार मार्ग निर्धारित किया गया। भक्ति मार्ग की उपासना करने वाले अनुयायियों के लिए भगवान विविध रूप प्रकट किए हैं। उनकी लीला, उनका व्यवहार भक्तों के बहुत प्रिय लगता है। जिस पुराण या आगम में भगवत स्वरूप की उपासना बताई गई है वहाँ उसी स्वरूप को सर्वोपरि परात्पर बतलाया गया है सब जगह। तो बात भी मनोवैज्ञानिक ढंग से सर्वथा युक्त और आवश्यक है। जिस स्वरूप की उपासना उपासक करता है उसको सर्वोपरि मानकर ही करना चाहिए। श्रीपाद रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी कृष्ण भक्त हैं, और इनका छोटा भाई अनुपम राम भक्त जीव गोस्वामी के पिताजी, उनके गंगा प्राप्ति के बाद श्रीपाद सनातन गोस्वामी जब पुरी में पहुंचते हैं तो भगवान चैतन्य महाप्रभु उनसे बात करते हैं। महाप्रभु कहे अनुपम बड़ा सरल हृदय का था, राम का भक्त था। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि प्रभु इतना महान राम भक्त था कि एक बार हम और रूप दोनों मिल करके कहने लगे कि हम दोनों भाई कृष्ण की उपासना करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, और तुम रामायण पढ़ते हो, राम राम जपते हो, ठीक नहीं, एक साथ रह रहे हैं तो एक ही मंत्र जपे, एक साथ भागवत सुने अच्छा होगा, तुम भी कृष्ण मंत्र जपो। हम लोगों के व्यवहार से उसका मन फिर गया, तो कहा कि ठीक है आप लोग मंत्र दीजिए, हम अब नाम जपेंगे कृष्ण नाम और भागवत सुनेंगे, रामायण छोड़ देंगे। तो हम लोग उसको मंत्र सिखाए, महामंत्र बतलाए कि भागवत सुनो, अब रामायण के फेर छोड़ दो। और सुबह में मिला तो कहा आकर हम लोगों के सामने कि हमें माफ कर दीजिए, मैं रात भर सो नहीं पाया, क्या हो गया। अनुपम कहने लगा कि हम जब विचार करते हैं कि हम अपने प्रिय श्री राम के चरणों में अपना जीवन दे दिए हैं, माथा दे दिए हैं, और मैं उस माथा को, उस सिर को वहां से कैसे हटाऊं, यह सोचते ही हमारा कलेजा विदीर्ण हो रहा है, कलेजा फट जाएगा, मैं क्या करूं, मेरे बस की बात नहीं है कि मैं राम की उपासना छोड़ दूं, भैया मुझे माफ कर दीजिए, हम नहीं छोड़ पाएंगे। तब रूप सनातन को आलिंगन किए और कहे कि हम आपकी परीक्षा ले रहे थे, आप राम नाम ही जपिए और रामायण ही पढ़िए। तो महाप्रभु उसी संदर्भ में कहते हैं, धन्य से ही प्रभु जे न छाड़े निज जन, धन्य है वह प्रभु जो अपने भक्त को अपने माधुरी में, अपने गुण में, अपने रूप में, अपने चरणों में आसक्त रखते हैं। अगर किसी कारणवश वह भक्त कहीं बाहर भी जाने लगता है तो उसके शिखा पकड़कर अपने चरणों में ला देते हैं। तो ये उपासना अलग अलग बतलाया गया और इसी भाव में भक्त लोग भगवान की उपासना करते हैं तब उसका वास्तविक फल प्राप्त होता है। तत्व पर विचार करके शास्त्र ने उनको सर्वोपरि मानकर उपासना विधि बताया है। और जो बात भगवत स्वरूपों के संबंध में है वही भगवान नाम के संबंध में भी है। इस तत्व को हृदयंगम कर लेने पर जहाँ राम नाम को सर्वोपरि सहस्त्र नाम के बराबर माना गया और जहाँ कृष्ण नाम को राम नाम की अपेक्षा भी ऊंचा बताया गया है, तो उन सभी स्थानों की संगति कैसे बैठेगी, इसकी विवेचना, इसकी तात्विक विवेचना की पृष्ठभूमि पर अगर विचार किया जाए तो कृष्ण नाम की महिमा को समझने में कहीं भी सांप्रदायिक संकीर्णता में नहीं पड़ना चाहिए। या अतिशयोक्ति नहीं है, अर्थवाद नहीं है, कहीं शंका नहीं रह जाएगी, सबका अलग अलग अपना अस्तित्व तो है। तो सनातन गोस्वामी कुछ श्लोक उद्धृत करते हैं मथुरा महात्म पद्म पुराण पाताल खंड के श्लोकों को, जहाँ शिव जी प्रवचन कर रहे हैं पार्वती से कि तदेव शीणु भो देवी प्रभावो जैन वर्तते श्री कृष्ण महिमा सर्व चीज शक्ते यह प्रवर्तते तारकम पारकम तस्य प्रभावो यम अनाहत तारकम जायते मुक्ति प्रेम भक्ति से पारकात। भगवान शिव कहते हैं कि राम कृष्ण दो नाम है भगवान के, दोनों की दो विशेषता है, राम नाम तारक है और कृष्ण नाम पारक है। तारक का अर्थ है जो मुक्ति प्रदान करता है, समस्त दुखों को समाप्त कर देता है, और पारक नाम से प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। अज्ञात अथवा ज्ञातम तारकम जपते यदि, अगर जान कर या अनजान में किसी तरह तारक नाम राम नाम कोई जपता है तो तत्र भवेन मृत्यु, जब उसकी मृत्यु होती है तो काश्यांतु फलमा दिशेत वर्तते जस जिह्वाग्रे सप उमा लोक पावन छिन्नति सर्व पापानी काशी वासम फलम लभेत। तारक नाम जो जपता है वो हमारे समान सुख की प्राप्ति करता है, मुक्त हो जाता है सारे दुखों से, वह हमारे साथ काशी में निवास करता है, नाम का आनंद लेता है और दुखों से छूट जाता है, तर जाता है। नाम का आश्रय लेने वाला वो सदा शिव के लोक को प्राप्त करता है जो हरि स्वरूप है। अथ पारक मुचेत यथा मंत्र यथा वलम पारकम तत् वर्तेत रिद्धि सिद्धि समागम, पारक मंत्र का जो उच्चारण करता है उसको रिद्धि सिद्धि सब इतना प्राप्त होने लगती है कि भक्त घबराने लगता है कि अब करे क्या, लेकिन उसको नहीं चाहता। पूज्यो भवती तय लोक्य, जो पारक नाम का आश्रय लेता हो त्रिलोकी में पूज्य हो जाता है। सतायुर जायते पुमान अष्ट सिद्धिम समाजुक्तो वर्तते तत्र पारकम, उसको अष्ट सिद्धि नव निधि और उसका जस प्रतिष्ठा उसके पीछे चलने लगते हैं दास दासी की तरह, चाहता नहीं है लेकिन उसका मान प्रतिष्ठा सब बढ़ जाता है। जैसे विद्यावधु जीवनम की व्याख्या में आप सुने, अपने आत्म गोपन रखते हैं फिर भी उनका प्रतिष्ठा बढ़ता है। पारकम जस जिह्वाग्रे तस संतोष वर्तिता परिपूर्णो भवेत काम सत संकल्पस तथा, पारक की महिमा खूब शिव जी गा रहे हैं, कह रहे हैं जिसके जिह्वा के अग्रभाग पर पारक मंत्र है, पारक मतलब कृष्ण नाम, कृष्ण ही केवल नहीं, आगे सनातन गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण का अर्थ केवल कृष्ण नहीं, कृष्णावतार में जो जो नाम प्राप्त किए, गोविंद हरि माखन चोर गोपीनाथ राधा रमण रास बिहारी रसिक शेखर सब, परिपूर्ण भवेत काम सत संकल्पता तथा जो कृष्ण नाम जपता है वो परिपूर्ण हो जाता है, जो चाहता है जो संकल्प करता है वो पूरा हो जाता है। द्विविधा प्रेम भक्तिस्तु श्रोता दिष्टा तथैव च अखंड परमानंद तद्गतो गेय लक्षणम अश्रुपात क्वचित नृत्यम क्वचित प्रेमाति विह्वल क्वचित चेतस्य महामूर्छा मद गुणो गीयते क्वचित। प्रेम में विह्वल होकर जप करते करते कभी अश्रुपात करता है, कभी नाचने लगता है, कभी प्रेम मूर्छा को प्राप्त होता है, भगवत गुणों को गाने लगता है। तो इस तरह से प्रेमा भक्ति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार सब भगवान नामों की समान महिमा नहीं है, इसका समाधान करते हुए श्रीपाद सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास का एक श्लोक प्रस्तुत करते हैं और फिर उसका टीका लिखते हैं। श्रीमन नामनाश्च सर्वेषां महात्मेषु समेष्वपि श्री कृष्णस्य अवतारेषु विशेषः कोऽपि कस्यचित्। इसका टीका लिखे हैं, सामान्यतो नामनाम सर्वेषां अपि महात्म्यं लिखित्वा इदानीं विशेषतो लिखन तत्र महात्मस्य सामेपि किंचित विशेषम दृष्टान्तेन साधयति श्रीमद्दिति श्रीमतो भगवतः श्रीमतां वा अशेष शोभा सम्पत्त्यतिशयुक्तानां नामनाम कस्यचित् नामनः कोऽपि महात्म विशेषोऽस्ति नतु चिन्तामणिरेव भगवान नामना महिमा सर्वोऽपि सम एव उचित इति संकया दृष्टान्तेन सामेपि किञ्चित् विशेषं दर्शयति कृष्णस्यवेति यथा नृसिंह रघुनाथ दीनां महावतारणां सर्वेषां भगवतया सामेपि कृष्णस्तु भगवान् स्वयं युक्तया कृष्णस्य अवतारे त्वेपि साक्षात् भगवत्वेन कश्चित् विशेषो दर्शितवदिति एतस्य श्रीधर स्वामी पादै व्याख्यातम्। ये भगवान के जो विविध अवतार है, विविध नाम है, श्री राम नृसिंह अनंत भगवत स्वरूप अनंत नाम, वे सभी भगवान है, ठीक है। अतः भगवान के दृष्टि से सब समान है, लेकिन सब भगवान होते भी स्वयं भगवान कृष्ण है। सबको भगवान कहा गया लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इस प्रमाण के अनुसार कृष्ण में कुछ विशेषत्व है, वे स्वयं भगवान है, यही उनकी विशेषता है। अन्य भगवत स्वरूपों में कोई स्वयं भगवान नहीं है। राम नृसिंह आदि जो भी भगवान नाम भगवत अवतार है उसको स्वयं भगवान नहीं कहा गया। इस दृष्टि से सभी नाम समान होते हुए भी जो अनंत भगवत स्वरूप है वो अखिल रसामृत वारिधि कृष्ण के अनंत रस वैचित्री के अंश है, कला है। एकोपि सन यो बहुधा विभाति, श्रुति कहती है बहु मूर्तैक मूर्तिकम सर्वे पूर्णा शाश्वताश्च, कृष्ण के विषय में सब कहा गया। तो इस प्रकार एक सुंदर उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। किसी कॉलेज में बहुत से प्रोफेसर लेक्चरर होते हैं, अध्यापक होते हैं, और उसमें उन्हीं अध्यापकों में एक अध्यक्ष होता है, प्रिंसिपल होता है। तो ऐसे अध्यापक की दृष्टि से सब एक समान है, लेकिन समानता के बीच भी अध्यापकों में परस्पर कुछ वैशिष्ट है, क्योंकि अलग अलग विषय के अध्यापक होते हैं। सभी एक विषय के नहीं होते हैं, अलग अलग विषय के होते हैं। उन सबके मध्य जो अध्यक्ष है उसकी एक स्पेशल विशेषता है कि वह भी अध्यापक के दृष्टि से सबके समान है, वो भी पढ़ाता है, लेकिन अध्यक्ष की दृष्टि से वो कॉलेज का परिचालन करता है। और अध्यापकों के भी परिचालन में उसकी विशेष दक्षता होती है जो अन्य अध्यापकों में नहीं होता है। तो उनका यह विशेषत्व हुआ समानता के बीच विशेषत्व, समान होते हुए भी विशेष है। इसी प्रकार समस्त भगवत स्वरूपों में या भगवान नामों के बीच श्री कृष्ण नाम विशेष स्थान रखता है, उनमें एक विशिष्ट वैशिष्ट है। जो शक्ति सामर्थ कृष्ण में है वो राम में है। भगवान के रूप में सब एक है, भगवान के साथ जो सदैव स्वर्ग पूर्णता है वो सभी भगवत स्वरूप में है। ऐसा नहीं केवल कृष्ण में है और उनके अंश में नहीं है, लेकिन कृष्ण में जो विशेष माधुरी है, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, धाम माधुरी, लीला गुण माधुरी, ये सब विशिष्ट है। कृष्ण नाम का यह अभिप्राय है। इनके विविध नाम है, गोविंद, दामोदर, माधव, गिरधारी, नंदनंदन, यशोदा नंदन, रास बिहारी, गोपीनाथ, गोपी प्राण बल्लभ, राधा जीवन, प्रेम उत्पन्न करने वाला नाम है, प्रेम देने वाला नाम है। समस्त नामों में ये सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो नाम ग्रहण में कोई काल टाइम की अपेक्षा नहीं है। हेला श्रद्धा से भी नाम ग्रहण किया जाए और हेलना पूर्वक तो ये मोक्ष तक प्राप्त करा देगा, वैकुंठ दे सकता है, लेकिन प्रेम फल नहीं दे सकता। इसके लिए विशेष अवस्था की आवश्यकता है कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए। किस प्रकार नाम ग्रहण करने से प्रेम प्राप्त होगा इसको आगे के श्लोक में महाप्रभु कहते हैं किस तरह की भावना से जप करना पड़ेगा। त्रिणादपि सुनी चेन तरूरी व सहिष्णा अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो फिर इसकी व्याख्या कल सुनेंगे। हरे कृष्ण।